पूज्य संत महानुभाव सत्संग प्रेमी माताओं बहनों और भाइयों, मनुष्य के व्यक्तित्व में तीन प्रकार की शक्तियां हैं, क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और विचार शक्ति। इन तीनों शक्तियों के आधार पर साधना के अलग अलग तीन अंग होते हैं। उनमें से भाव शक्ति के आधार पर मनुष्य ईश्वर विश्वास को धारण करता है और ईश्वर विश्वास का एक विशिष्ट साधन पंथ है, जिसके आधार पर ईश्वर विश्वासी का भक्त अपनी वर्तमान दयनीय दशा से मुक्त होकर जीवन की पूर्णता तक पहुंचता है। मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर विश्वास शरीर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। बातें तो बहुत सी हैं और बहुत प्रकार से हमारे भाई बहन इन बातों को सुन चुके हैं। इन कुछ खास खास बातें जो इस विचारधारा के दृष्टिकोण को स्वस्थ करने के लिए आवश्यक हैं, और अधिकांश भाई बहन हमारे जो यहाँ बैठे हैं उनमें अधिकांश साधक ईश्वर विश्वास को रखने वाले हैं, तो उनके हित के लिए भी और विचारधारा को स्पष्ट करने के लिए भी कुछ आवश्यक बातें आपकी सेवा में निवेदन करूंगी। तो पहली बात, हम सब लोगों के लिए ज्ञातव्य, जिसको कि हम सबको जानना चाहिए, वो ये है कि ईश्वर विश्वास शरीर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। शरीर धर्म और स्वधर्म का क्या अर्थ है? तो शरीर धर्म का अर्थ यह है कि जिसको शरीर की सहायता से पूरा किया जा सके वह शरीर धर्म है, और जिसको स्वयं अपने द्वारा पूरा किया जा सके वह स्वधर्म है। मानव सेवा संघ के सिद्धांत के अनुसार ईश्वर विश्वास शरीर धर्म नहीं है, स्वधर्म है। अर्थात ये शरीरों की सहायता से पूरा नहीं किया जाता, यह अपने द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रातः काल की बैठक में जैसा मैंने निवेदन किया था कि हमारा आपका यह मैंपन जो है, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैं हूँ, मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता, अपना सेल्फ, अहम, अनेक शब्दों में प्रकाशित किया जाता है इसको, तो यह बड़ा विलक्षण है, बड़ा विचित्र है। और इसकी सबसे बड़ी विचित्रता क्या है कि जिस संसार से मैं का जातीय संबंध नहीं है, नित्य एकता नहीं है, उस शरीर के साथ तादात्म्य जोड़ लेने पर उत्पत्ति विनाश से युक्त जो शरीर के लक्षण हैं वो सब मैं पर आरोपित हो जाते हैं। पहले युवक था, अब वृद्ध हूँ, स्वस्थ था, बीमार हूँ, जिंदा था, मर रहा हूँ, अमीर था, गरीब हूँ, गरीब था, अमीर हो गया। तो जो बदलने वाली दशाएं हैं वो शरीर की हैं, और जो शरीर से परे की धातु से बना हुआ मैं है वह जब शरीर के साथ अपने को मिला लेता है तो शरीर के सब लक्षण उस पर अपने पर घटित होने लगते हैं, और उसी के अनुसार हम सब लोग अपने को दुखी, सुखी, मानने भी लगते हैं और उसी तरह से हिंदू करने लगते हैं। तो इसी में यह चर्चा आई कि ईश्वर विश्वास को जब धारण किया जाता है, अर्थात कोई भी साधक अपनी साधना के लिए, अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए, सत्य को अपने व्यक्तित्व में अभिव्यक्त करने के लिए परमात्मा की सत्ता को स्वीकार कर लेता है, तो यह स्वीकृति स्व के द्वारा होती है, शरीर के द्वारा नहीं होती। इस स्वीकृति में हाथ पांव आंख नाक कान की सहायता नहीं चाहिए, यह स्वीकृति मैं के द्वारा है। तो जिसने पहले से स्वीकार किया था कि मैं शरीर का हूँ, मैं कुटुंब का हूँ, मैं मकान का हूँ, मैं दुकान का हूँ, अनेक प्रकार की ममताएं, अनेक प्रकार के संबंध पहले जिसने स्वीकार किया था, वही मैं इन सब असाधन रूपा स्वीकृतियों को अस्वीकार करके एक सत्य की स्वीकृति लेता है, गुरु की सहायता से, ग्रंथ की सहायता से, जीवन की आवश्यकता से। तो अपने द्वारा वह मान लेता है कि भगवान है और मैं अब और किसी का नहीं हूँ, केवल परमात्मा का हूँ। वो तो प्रभु की सत्ता को स्वीकार करना, उनके साथ मेरा नित्य संबंध है इस बात को स्वीकार करना, और उनकी प्रियता के अतिरिक्त इस जीवन का दूसरा कोई अर्थ नहीं है, इस सत्य को स्वीकार करना ईश्वरवाद कहलाता है। फिर दोहराती हूँ, एक बार और सुन लेना, क्योंकि भजन, चिंतन, ध्यान, पूजन, प्रेम भगवान के संबंध में तो सब लोग चाहते ही रहते हैं, तो आवश्यकता को हम सब लोग महसूस करते हैं कि भगवान की याद बनी रहे, भगवान का ध्यान बना रहे, उनके चिंतन में रहे, उनके प्रेम से हृदय भर जाए, ऐसी अभिलाषा सभी ईश्वर विश्वासी साधकों की होती है। लेकिन इस अभिलाषा की पूर्ति में बड़ी देर लगती रहती है, साधक परेशान होते रहते हैं। तो मानव सेवा संघ ने ईश्वर विश्वास का जो मूल आधार है, जिस आधार पर ये सारे साधन तत्व व्यक्तित्व में अभिव्यक्त होते हैं, उन आधारों को अपने भाई बहनों के सामने रखा। तुमने स्वेच्छा से ईश्वर विश्वास पसंद किया, दबाव से नहीं, जबरदस्ती से नहीं। क्यों? क्योंकि आंतरिक जीवन का विकास जो है वो दबाव से नहीं होता है, जबरदस्ती से नहीं होता है, आरोपित करने से नहीं होता है, वह स्वेच्छा से होता है। तो स्वाधीनता पूर्वक स्वेच्छा से हमने, हम भाई बहनों ने स्वीकार किया कि हम ईश्वर विश्वासी हैं, उनकी सत्ता में विश्वास करते हैं, उनसे अपना नित्य संबंध मांगते हैं, आत्मीय संबंध मांगते हैं, और अब मैंने यह व्रत लिया है कि मेरे जीवन का अर्थ केवल प्रभु प्रेम है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो यह स्वधर्म है। ऐसी स्वीकृति व्यक्ति अपने द्वारा लेता है, इसमें अभ्यास हेतु नहीं है कि इन वाक्यों को बहुत बार दोहराएंगे तो पक्का हो जाएगा, बहुत बार बोलूंगी तो पक्का हो जाएगा, कि बहुत बार सुनेंगे तो पक्का हो जाएगा। तो अभ्यास इसमें काम नहीं करता। इस सत्य को स्वीकार करना मानव सेवा संघ की भाषा में सत्संग कहलाता है। अभी जो ईश्वर की बातचीत हो रही है, यह बातचीत ईश्वर की चर्चा है, और सुन करके किसी भी भाई ने, किसी भी बहन ने निश्चय कर लिया कि बिल्कुल सच्ची बात है, अब तो हम केवल ईश्वर में ही विश्वास करेंगे और उन्हीं के होकर रहेंगे और उनके प्रेम के ही लिए हम जिएंगे। ऐसा जिसने अपनी ओर से ठान लिया उसका सत्संग हो गया। तो सत्संग अपना पुरुषार्थ है, स्वधर्म है, और सत्संग के फल से साधक के जीवन में साधना की अभिव्यक्ति होती है, अपने आप से साधन होने लगता है, करना नहीं पड़ता। तो आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है। क्या सुना है कि अपने द्वारा केवल परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करना, उसके अतिरिक्त और कुछ न चाहना, उसके प्रेम को ही जीवन मानना, इस पर तो साधक वर्ग की दृष्टि नहीं जाती। इस स्वधर्म पालन पर दृष्टि किस बात पर जाती है कि मुझे अगर समय मिलता तो हम कितनी देर बैठ करके नाम लेते, अगर मुझे समय मिलता तो हम इतनी देर बैठ करके जप करते कि ग्रंथ पढ़ते कि ध्यान करते कि पूजन करते कि भजन गाते, इस पर ध्यान जाता है। हम कुछ करें ईश्वर विश्वासी होने के अनुसार हमको कुछ करना है, ऐसा सोचकर सत्संग किए बिना साधक जब साधना में लग जाता है तो उसको सफलता नहीं मिलती है। अर्थात प्रभु की सत्ता को स्वीकार करना, उनसे अपनी आत्मीयता स्वीकार करना और उनके प्रेम को ही जीवन मानना, इन तीन बातों को प्रारंभ में लिए बिना जब हम भजन करना चाहते हैं, साधन करना चाहते हैं, ध्यान करना चाहते हैं, मन लगाना चाहते हैं भगवान में, तो हमारी ये अभिलाषा पूरी नहीं होती है, तकलीफ होती है। तो स्वामी जी महाराज के हृदय में एक बड़ी पीड़ा थी। वह क्या थी, उन्होंने अपने मुख से कहा और मैंने लिख के रखा है। क्या कहा उन्होंने कि मुझे जब ईश्वर विश्वास मिला, ऐसा कहा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा, मैंने ईश्वर विश्वास किया ऐसे नहीं कहा, कहा मुझे जब ईश्वर विश्वास मिला और उसके प्रभाव को मैंने देखा तो मेरे भीतर एक बड़ी लगन लग गई कि कोई भी भाई कोई भी बहन ऐसा न हो कि जो ईश्वर विश्वास से वंचित रह जाए, अर्थात सबको ईश्वर में विश्वास मिल जाए, सबका दुख मिट जाए, सब निश्चिंत हो जाए, सब निर्भय हो जाए, ऐसा एक सर्वहितकारी भाव उस महापुरुष में जग गया। तो उन्होंने विश्वास करो और विश्वास मिला, दोनों में थोड़ा सा भेद रखा। क्या भेद रखा कि मनुष्य का विकास चाहे भक्ति पथ में, चाहे ज्ञान पंथ में और चाहे कर्म पंथ में, किसी भी रास्ते से व्यक्ति का जो विकास है वो सत्य की स्वीकृति से आरंभ होता है। सत्य की स्वीकृति से क्या होता है कि अहम रूपी अणु में आमूल परिवर्तन होता है, तो वहां से आरंभ हुआ। जिसने प्रभु को अपना माना तो उनकी सत्ता को स्वीकार करने मात्र से वह आश्वस्त हो गया, मैं भी नहीं अनाथ जगत में, मेरा भी प्रभु पति है, मैं अनाथ नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मेरा समर्थ स्वामी है। पैगंबर मोहम्मद युद्ध में जा रहे थे एक मित्र के साथ, तो नगर के प्रेमी लोगों ने आगे से आके उनको घेरा और कहा कि वहां तो बड़ा बड़ा भारी समूह है, बड़ी भारी सेना है दुश्मन के यहाँ, आप तो एक ही के साथ जा रहे हैं, आप लोग तो दो ही मित्र जा रहे हैं, वहां तो बहुत सेना है, तो ऐसा मत कीजिए और सेना अपने साथ में लीजिए। तो पैगंबर मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दो ही नहीं हूँ, मेरे साथ एक और है जो दुनिया की सारी शक्तियों का सामना कर सकता है, इसलिए आप लोग डरिए मत, निश्चिंत रहो। अब सोच के देखो उनका ईश्वर विश्वास और मेरे ईश्वर विश्वास में कितना अंतर है, कितनी सजीवता है उनके विश्वास में। तो बाहर से दिखाई तो नहीं देता, प्रेमी लोग, स्नेही लोग, नगर के लोग घबरा रहे हैं, ये दो ही आदमी जा रहे हैं, इतनी बड़ी सेना से लड़ेंगे कैसे। तो मोहम्मद मुस्कुराते हैं, नहीं नहीं बरोबर, मैं दो ही नहीं हूं, मेरे साथ एक और है, और वो अकेला ही सारी सृष्टि की शक्ति का सामना करने के लिए प्रयास है। इतनी सुंदर निश्चित ये कहलाता है उनकी सत्ता को स्वीकार करना। तो जिसने सत्ता को स्वीकार किया, और केवल सत्ता नहीं, नहीं तो मेरी तरह अक्खर स्वभाव का आदमी हो तो कह दे झट से, अरे होंगे जिसके लिए होंगे उसके लिए होंगे, हमारे काम नहीं आते तो हम कह देंगे सोचे। तो केवल सत्ता नहीं, वो है और मेरा केवल उसी से नित्य संबंध है, और बाकी सब जो दिख रहे हैं वो क्या है, तो ये सब तो उसके हैं, उसके नाते इन सब की सेवा करो, सबका भला मनाओ, सबसे मीठा बोलो, सबका आदर सत्कार करो, सबको सहयोग दो भले, लेकिन अपना संबंध, अपना नित्य संबंध केवल उसी से है। तो ऐसा जिन ईश्वर विश्वासियों ने माना, उनके जीवन में ईश्वर की उपस्थिति का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया। तो कितने दिन में हो गया, कितनी बार कहना पड़ा कि मेरा उससे नित्य संबंध है, मेरा उससे नित्य संबंध है, जप करना पड़ा कि लिखना पड़ा कि पढ़ना पड़ा कि बोलना पड़ा, वो नहीं है। और महाराज बड़ा बड़ा सहज उदाहरण दे देते कि भाई मेरे, जब तुम विवाह करने गए थे, वेदी पर बैठे थे, तो तुमसे मंत्र थोड़े जपवाया गया कि ये लड़की मेरी पत्नी है, ये लड़की मेरी पत्नी है, दोहराया बार बार कहा तुमने, तो नहीं कहा, और तुमने तो अपने मुख से कहा भी नहीं, पंडित ने मंत्र पढ़ दिया और तुमने मान लिया। तो मान लेने के बाद से कभी विस्मृति हुई क्या कि ये लड़की मेरी पत्नी है कि नहीं है, संदेह हुआ नहीं हुआ। मान्यता का बड़ा जोरदार प्रभाव होता है, मनुष्य के अहम में स्वीकृति को स्वीकार करने की बड़ी अद्भुत क्षमता है। तो महाराज कहते हैं कि जो अपना होगा और अपने पास होगा और समर्थ होगा और अपने ही में विद्यमान होगा, उसको याद करोगे कि उसका नाम जपोगे कि उसका चिंतन करोगे कि उसका ध्यान करोगे कि उसका काम करोगे, क्या करोगे, उसको प्यार करोगे कि उसको बुलाओगे। तो ईश्वरवाद मनुष्य के जीवन का एक अद्भुत तत्व है। और कभी कभी मैं सोचती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसने व्यक्तित्व में अभाव अनुभव किया, जिसने व्यक्तित्व में नीरसता की पीड़ा को अनुभव किया, उसने अगर उस अनंत परमात्मा को अपना परम प्रेमास्पद मान करके उनकी विभूतियों से संपन्न नहीं हुआ तो फिर उसके जन्म लेने का अर्थ ही क्या निकला? नहीं निकला। बड़ा भारी महल बना लिया, बहुत दुनिया में नाम कमा लिया, बहुत धन कमा लिया, बहुत से साथी जोड़ लिए, जितना भी यह सब यहाँ पर किया गया हो, आधुनिक ढंग की भाषा में बड़े गौरव से लोग कहते हैं कि उनकी तो बड़ी उन्नति हो गई, वह आदमी तो बहुत राइज कर गया। अंग्रेजी मिला मिला के हम लोग बोलते हैं ना, तो कहते हैं कि बहुत राइज किया। तो मैं भीतर भीतर सोचती हूँ कि कोई आदमी बड़ा राइज कर गया, बड़ा ऊंचा उठ गया, तो इसका मापदंड अपने पास क्या है? क्या वह ज्ञान में ऊंचा उठ गया? क्या वह प्रेम में ऊंचा उठ गया? क्या उस अलख अगोचर अविनाशी को उसने अपने सामने, अपने भीतर बाहर प्रत्यक्ष करके उससे मिल लिया? अगर ये सब हो गया तो कहना चाहिए कि सचमुच उसने राइज किया। और अगर मकान और दुकान और दलबंदी और संपत्ति और डिग्री, ये सब अगर माध्यम माना जा रहा है राइज करने का, अर्थ ये लिया जा रहा है, तो जिस दिन आंखों से दिखाई नहीं देगा तो पढ़ा लिखा हुआ क्या काम आएगा? जिस दिन मुख से बोला नहीं जाएगा तो वक्तव्य की शक्ति किस काम आएगी? जिस दिन खाया नहीं जाएगा उस दिन बढ़िया बढ़िया भोग्य पदार्थ किस काम आएगा? तो राइज करना तो धूल में मिल गया भाई, राइज करना क्या कहलाएगा? जब सब प्रकार से तुम दीनहीन हो गए और सारा सामान और सब साथी जो इकट्ठा किया था एक भी साथ नहीं दे रहा है, तो हम अपने को ही सर्टिफिकेट दे लें, हम कह सकेंगे कि मैंने बड़ा राइज किया? ये नहीं कर सकेंगे। तो ऐसा जो यह एक अनमोल जीवन है, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ बुद्धि के आधार पर समझ में आ रहा है, इस देखे हुए और समझे हुए के से परे अगर अविनाशी अनंत तत्व से मेरा मेल नहीं हुआ, उससे मेरी अभिन्नता नहीं हुई, तो मैं तो ऐसा समझती हूँ कि जीवन निरर्थक ही गया। और फिर बड़े दुख की बात है कि हम अपने को ईश्वर विश्वासी भी कहते हैं और देह के विश्वास पर चलते हैं, धन के विश्वास पर चलते हैं, बल के विश्वास पर चलते हैं, अपनी बुद्धिमानी के विश्वास पर चलते हैं, ये तो और भी दुख की बात है। तो मानव सेवा संघ की दृष्टि से ईश्वर विश्वास की साधना जो है वो स्वधर्म पर आधारित है, अपने द्वारा उस सत्ता को स्वीकार करने पर आधारित है, और जितनी साधना के रूप हैं वो सारी साधनाएं इस आत्मीय संबंध की स्वीकृति में से निकलने वाली है। थोड़ी थोड़ी देर में उनकी याद आ रही है, उनकी उपस्थिति के आभास से जीवन में निर्भयता आ रही है, उनकी उपस्थिति के आभास से हृदय में मधुरता आ रही है, तो उनकी मधुर स्मृति का जागृत हो जाना यह साधन होता है। कैसे उत्पन्न हुआ? आत्मीय संबंध की स्वीकृति से। तो आत्मीय संबंध की स्वीकृति सत्संग है और उससे उत्पन्न हुई स्मृति साधना है, और उस स्मृति की वृद्धि जब होती है तो प्रभु की स्मृति प्रभु के समान ही मधुर है, उसमें बड़ा रस है, उसमें बड़ा आकर्षण है। और जैसे जैसे स्मृति तीव्र होती जाती है, उससे भिन्न सबकी विस्मृति भी होती जाती है। और अंत में क्या होता है कि साधक के अहम में सिवाय भगवत स्मृति के और दूसरा कुछ रह ही नहीं जाता, तब उस मधुरता में उस रस में सीमित अहम भाव का लोप हो जाता है, प्रेमी और प्रेमास्पद मिलकर एक हो जाता है। अब बताइए, आप सोच करके देखिए कि ईश्वर विश्वास का आरंभ हुआ था स्वधर्म से, और इसकी वृद्धि कैसे हुई, तो स्वधर्म से उदित हुई साधना से, और इसकी पूर्णता कहाँ जाकर के हुई कि जहाँ अहम में से सब कुछ निकल गया, केवल एक स्मृति मात्र ही रह गई, तो सीमित अहम भाव का भी लोप हो गया और संपूर्ण अहम प्रेम के धातु में परिवर्तित होकर के प्रेमास्पद से एक हो गया। तो आरंभ भी हुआ था स्वधर्म से, विकास भी हुआ अपने में उदित हुई साधना तत्व से। तो जगह जगह पर महाराज जी ने इस बात को प्रकट किया है कि साधन तत्व जो है वह भी जीवन तत्व है, वह भी अभ्यास का फल नहीं है, शरीर के द्वारा किए गए अभ्यास का परिणाम वो नहीं है, अपने द्वारा स्वीकार किए गए सत्य की अभिव्यक्ति है वो। तो कहाँ तो जीवन का यह सत्य और कहाँ हम लोगों का छोटा प्रयास। अब इतनी देर बैठकर नाम लेंगे तो इंतजाम तो ऐसा किया था कि अब तो हम दो तीन घंटे दुनिया की ओर देखेंगे ही नहीं, अकेले में बैठ जाएंगे, कमरा बंद कर लेंगे और प्रभु का नाम लेंगे। तो कमरा में बंद हो जाने से, अकेले में बैठ जाने से, अपने पर जोर डालने से नाम तो हृदय में आया नहीं। जोर डाल करके थोड़ी देर मैंने नाम लेने का प्रयास किया तो नीरसता से जीवन में मानस में थकान आने लग गई। फिर क्या हुआ कि बीच बीच में सब दूसरी दूसरी बातों की याद आने लग गई। तो जोर डालने से साधन नहीं बनता है, जबरदस्ती करने से साधन नहीं बनता है। ईश्वर भक्ति जो है वो किसी क्रिया का परिणाम नहीं है, ईश्वर भक्ति जो है वह ईश्वर के साथ आत्मीय संबंध को स्वीकार करने से उदित होती है। तो प्रारंभ में भी आप ही हैं और साधन तत्व की अभिव्यक्ति आप ही में हुई, मन में, चित्त में, बुद्धि में, शरीर में नहीं हुई। प्रभु का नाम हृदय में याद आया और प्रेम उमड़ा तो उसके प्रभाव से रोमांच हो रहा है कि उसके प्रभाव से अश्रुपात हो रहा है कि आंखें सजल हो रही हैं कि देह की विस्मृति हो रही है, ऐसा भी होता है। प्यारे प्रभु की याद आई तो सौ शरीर बैठे हुए होने पर भी देह का भास खत्म होने लगता है। तो आप देखेंगे कि सत्संग भी व्यक्ति का स्वधर्म है और सत्संग के प्रभाव से जिस साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है वह भी स्व में से ही होती है। और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि महात्मा जी कोई उपाय बताइए कि मेरा मन भगवान में लगे। तो मन भगवान में कैसे लग जाएगा, और मन को जबरदस्ती लगा भी लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, मन तो तुम्हारे पास तक पहुंच नहीं सकता, चित्त तो तुम्हारे पास तक पहुंच ही नहीं सकता। ये मन, चित्त, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब शक्तियां जो हैं, ये तो यूनिवर्सल एनर्जी है, समस्ती शक्तियों के हिस्से हैं, इनकी सीमा तो भौतिक तत्वों के भीतर है। तो साधन तत्व की अभिव्यक्ति तो स्व में होती है। तो सत्य की स्वीकृति कहाँ हुई? अपने द्वारा स्व में हुई। और साधन की अभिव्यक्ति कहाँ हुई? वह भी स्व में हुई। और भगवान में जाकर के विलीन कौन हुआ? भी स्व हुआ। तो अपनी बात है ना, ये अपनी बात है, ये शरीर धर्म नहीं है। अब आगे अपने लोगों को सामने रख करके देखना है और सोचना है कि अगर इस जीवन की अंतिम परिणति प्रभु प्रेम की अभिव्यक्ति है, तो इस वर्तमान क्षण में हम सभी भाई बहन जहाँ हैं, जैसे हैं, क्या करें, कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें? तो भाई क्रियात्मक जो बातें हैं जीवन की, उन पर तो जोर डालने की बात नहीं है। किसी की बहुत रुचि हो तो भले करे, किए बिना न रहा जाए तो। लेकिन जोर डालने की बात क्या है कि अपने में, अपने व्यक्तित्व में सिवाय परमात्मा के और किसी की सत्ता मत मानो, और किसी की महत्ता मत मानो, उसके आत्मीय संबंध को न भूलो और उसी के होकर रहना, उसके प्रेम को ही जीवन का अर्थ मानना और उसी के नाते निकटवर्ती जन समुदाय की सेवा करना। तो प्रभु के नाते निकटवर्ती जन समुदाय की सेवा एक बात हो गई, और संसार से और निकटवर्ती जन समुदाय से कुछ न मांगना त्याग की बात हो गई। जिस प्रभु का प्रेम अपने को अभिष्ट है उनसे भी कुछ न मांगना त्याग की बात हो गई। और सिवाय उनके प्रेम के अपना दूसरा कोई अर्थ ही नहीं है, उनकी प्रसन्नता के लिए उनको प्यार करना, ये अंतिम बात हो गई। महाराज जी का एक नोट है, एक जगह पर कहा होगा मैंने लिखा है, तो उसमें ये लिखा है कि मैं ईश्वरवादी केवल इसलिए हूँ, समझ की वाणी है, मैं ईश्वरवादी केवल इसलिए हूँ कि मुझे जो चाहिए था वह और जो परमात्मा के देने की चीज थी उन्होंने बिना मेरे मांगे स्वयं ही दे दिया। और संसार से विलग में क्यों हुआ कि संसार के पीछे खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, खूब दौड़ा, लेकिन कुछ नहीं पाया। तो मांगने पर भी संसार ने मुझे कुछ नहीं दिया और न मांगने पर भी उसने सब कुछ दिया, इसलिए संसार को मैंने छोड़ दिया, परमात्मा को पकड़ लिया। ये मैं अपनी बात कह रही हूँ अपनी तरफ से। तो बड़ा विलक्षण तत्व है मानव जीवन का ईश्वर विश्वास, और इसके द्वारा बड़ा परिवर्तन होता है, बड़ा चमत्कार आता है जीवन में। जिस दिन से उनको अपना माना, अनाथपन सदा के लिए मिट गया, जिस दिन से उनकी महिमा स्वीकार की सब प्रकार का भय मिट गया, जिस दिन से उनके होकर रहना पसंद किया, तो अहम का अभिमान चला गया। प्रभु हैं, मेरे हैं, और मैं उनका हूँ, और उन्हीं की प्रसन्नता के लिए यह जीवन है। तो वो जैसे रखें वैसे रहो, जो कराएं सो करो। मीरा जी कहती हैं, जित बैठावो तित ही बैठूं, जहां बैठावो वहां बैठ जाऊं, और जो देवो सो खाऊं, जो तुम दे दो वही मैं खाऊं, जो तुम दे दो वही मैं खाऊं। जा रंग से आप सामरिया ताही मैं रंग जाऊं। क्या अर्थ है? अपना कोई संकल्प नहीं है। अब देखिए महाराज जी ने एक गर्भखंड लिखा है तो उसमें ये लिखा है कि परमात्मा के प्रेम से जीवन भरा नहीं, इस दिशा में असफलता रह गई। कारण क्या है? बहुत से कारण हो सकते हैं। एक कारण उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है, अब तक मेरा ध्यान उस पर नहीं गया था, अभी दो चार दिन पहले मैं नोट पढ़ गई थी तो उसमें निकला, बड़ा विचित्र है। वो कहते हैं कि देखो भाई, परमात्मा को पसंद करने वाले हो करके ईश्वर विश्वासी और ईश्वर भक्त होने के अभिलाषी हो करके क्या पसंद किया हमने, तो हमने प्रभु को प्रेम प्रदान करना नहीं पसंद किया, स्वयं प्रभु को अपना प्रेमास्पद बनाने के लिए उनको नहीं पसंद किया। क्या पसंद किया? कि मेरे वेशभूषा से, मेरे दैनिक दिनचर्या से, नाम लेने से, तरह तरह के विधि विधान से हम प्रभु को नहीं चाहते हैं, प्रभु पद चाहते हैं। ये लिखा है मैं स्वयं प्रभु हो जाना चाहता हूं। कैसे? लोगों की मुझ में श्रद्धा हो जाए तो तुम प्रभु को चाहते तो वो तो तुमसे मिलने के लिए बड़े लालायित हैं। और उन्होंने तो ठेका लिया है कि जो मुझे पसंद करेगा उसी से मैं मिल जाऊंगा, चाहे वो रैदास चमारा हो तो, और भिलनी शिवरी हो तो, और पंडित वंश में पैदा हुए गोस्वामी तुलसीदास जी हो तो, कोई जो मुझे पसंद करेगा उसी से मैं मिल जाऊंगा। तो ये तो प्रण उनका है, लेकिन हमने क्या किया? हमने प्रभु पसंद नहीं किया, प्रभु पद पसंद किया। कि भगवत भक्ति का नाम लेकर, भगवान का नाम लेकर मैं उस पद पर प्रतिष्ठित हो जाऊं जिस पद पर प्रभु प्रतिष्ठित है, तो लोग मेरी आराधना करें, लोग मेरा ध्यान करें, लोग मुझ में श्रद्धा रखें, तो लक्ष्य बदल गया, इसलिए असफलता हो गई। सफलता मिल ही नहीं सकती। और उनका रंग कैसा है? ये तो बड़े रसिक हैं, बड़े कौतुकी हैं। मैंने तो थोड़े से साधन काल में, थोड़े समय में ऐसा पाया, सोचने से बड़ा ही कैसा लगता है हम कैसे बताएं, लेकिन मैंने ऐसा पाया कि अनेक प्रकार के संकल्पों में फंसा हुआ व्यक्ति, अनेक प्रकार के संकल्पों में फंसा हुआ व्यक्ति, अनेक प्रकार के विकारों से भरा हुआ व्यक्ति यदि अपनी दुर्दशा से पीड़ित होकर संत की सलाह मानकर, ग्रंथ की सलाह मानकर जब वह अपने सब भले बुरे संकल्पों को प्रभु प्रेम के लिए छोड़ देता है, प्रारंभ तो करेगा ही, तो जिस दिन आरंभ किया उस दिन निश्चल निर्मल तो थे नहीं, बहुत प्रकार की कमजोरियां भीतर में थी, बहुत प्रकार के दोष भीतर में थे, बहुत सी अतृप्त वासनाएं कामनाएं भीतर थी, तो ऐसी दशा में ईश्वर विश्वास को धारण करके उनकी भक्ति, उनकी पूजा, उनकी आराधना, उनके प्रेम के लिए आपने जीवन को आरंभ किया। तो उन परम कृपालु की कृपालुता ऐसी देखी गई है कि बहुत छोटे छोटे संकल्प, बहुत मामूली मामूली बातें, लेकिन आपके लिए हितकर। जिनको आपने प्रभु प्रेम के लिए छोड़ दिया था, थकान प्रभु प्रेम के लिए छोड़ दिया था, उनमें से बहुत से संकल्प उनकी कृपा से पूरे किए जाते हैं और उनसे साधक को मुक्ति दिलाई जाती है। ऐसा होता है कभी कभी तो मैं आश्चर्यित होकर के स्वामी जी महाराज से बताती कि महाराज अब ये क्या बात है, जब इन संकल्पों को लेकर मैं जीती थी तब आपने कहा था कि लाली दिल्ली में जो भरा है वो सब पहले झाड़ दो, तुम खाली हो जाओ, तब सगाई की बातचीत होगी। और वो शब्दावली मुझे ठीक से उच्चारण में नहीं आता है, जो लोग जानते हैं वो लोग ठीक कर लेंगे, लेकिन कहा करते थे महाराज कि यूसुफ नहीं जो मिले चंद दरम से, कीमत जो दो आलम का बयाना है उसका, संसार का सुख भोग का और मोक्ष के आनंद का, दोनों का जो मूल्य है तो उस प्रेमी से सगाई करने के लिए एडवांस में देना पड़ता है। तो कीमत जो दो आलम का बयाना है उसका, भोग और मोक्ष समान रूप से न्यौछावर करो पहले, तब संबंध की बातचीत होगी पीछे। है तो वो सदा सदा से, टूटा कभी नहीं था, मिटा कभी नहीं था, छूटा कभी नहीं था, लेकिन मुझे विस्मृति हो गई थी, मैं भूल गई थी, तो उस विस्मृति का नाश और उस नित्य संबंधी के संबंध की स्मृति की जागृति, इस विशेषता के लिए भोग और मोक्ष एडवांस में देना पड़ता है। ऐसा सुना था तो बहुत कठिन बात, अपने लिए बहुत ही कठिन बात थी। खैर जो भी कुछ हो, वो कहानी कथा कहने की जरूरत नहीं है। जो कहना चाहती हूँ मैं वो ये है कि एक बार हिम्मत करके उसकी महिमा, उसकी आत्मीयता, उसकी कृपालुता को स्वीकार करके अगर अपने को इस पंथ पर डाल दिया जाए तो उस महामहिम की महिमा ऐसी है कि जिन संकल्पों को त्यागने में अपने असमर्थ थे उनके त्यागने की शक्ति उन्होंने दे दी, और जिन संकल्पों की पूर्ति मेरे लिए हितकर थी तो अनायास ही उन्होंने पूरी करवा के उसको खत्म की। ऐसा भी होता है। तो जब मैं अपना चित्र देखती पुराना और नया तो महाराज को बताती कि महाराज ये ऐसी ऐसी बातें हैं जो अपने पुरुषार्थ और अपने प्रारब्ध के बल पर तो कभी संभव ही नहीं थी, तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, और क्यों और क्या और कैसे की आदत तो बहुत थी ना, और परमात्मा ने दोष देखने की, उनकी आलोचना करने की, ये भी एक शौक होता है आदमी को। आदमी अपने को बड़ा गौरवशाली समझता है परमात्मा की आलोचना करके। हमने तो समझा था भाई, और कोई ना समझता हो तो कोई बात नहीं। तो हम उनको क्या देते कि स्वामी जी महाराज अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब क्या मुझे यह सब चाहिए, और कोई ये सब नहीं चाहिए, अब ऐसा क्यों हो रहा है। तो तो स्वामी जी महाराज रामायण की कथा सुना देते, कहते कि देखो विभीषण जी आए थे अधीर होकर के रघुनाथ जी के समर्पित हो गए और उन्होंने लंकेश कहकर संबोधित कर दिया और समुद्र का जल मना करके उनका राज्य अभिषेक कर दिया और बाद में जब बातचीत होने लगी तो विभीषण जी बड़े ज्ञानी पंडित हो गए। तो कहने लगे कि हे महाराज पहले तो कुछ कुछ वासना थी है? कहा पहले तो कुछ कुछ वासना थी लेकिन अब आपकी प्रीति के रस में वो बह गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान हंस दिए, हंसकर कहते हैं कि यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं, ये नहीं कहा कि तुम्हारे भीतर कहीं दबी होगी, हमारी तरह साइकोलॉजिकल एनालिसिस नहीं किया, तो उस पर दोषारोपण नहीं किया, ये नहीं कहा कि अरे तुम नहीं जानते हो तुम्हारे में ये दोष है, तो नहीं कहा। जैसे विभीषण ने वर्णन किया वैसे ही स्वीकार कर लिया और कहते हैं यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं मम दर्शन अमोघ जग माही, ये सखा सच्ची बात है तुम्हारी इच्छा तो नहीं है लेकिन अब हमारी योजना है उसमें तो तुमको चलना ही पड़ेगा, हम जो दे रहे हैं तो लेना पड़ेगा, हम जो कह रहे हैं तो करो। तो बड़ी विचित्र बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता कि ईश्वर विश्वास को जीवन में धारण करने का कितना चमत्कारपूर्ण प्रभाव होता है मनुष्य के जीवन पर, कि वो क्या नहीं करते हैं आपको अपना प्रेम पात्र बनाने के लिए। और जब बन जाता है साधक उनका प्रेम पात्र तो उसकी ओर से आने वाले प्रेम रथ को स्वीकार करके प्रभु अपने को कृतार्थ मानते हैं। इतना ऊंचा यह जीवन इस वर्तमान में हो सकता है और इस विलक्षणता को इस जीवन में अभिव्यक्त किए बिना ही सांस खत्म हो जाए तो बहुत बड़ा घाटा लगेगा। तो ऐसा न होने पावे, मैं फिर दोहरा दूं आरंभ की बात, मानव सेवा संघ सब भाई बहनों को ये नहीं कहता कि तुम ईश्वर विश्वासी बन जाओ, अगर बिना बने रह सकते हो तो बड़े आराम से रहो। और स्वामी जी महाराज बहुत आनंदित होकर कह देते कि बड़ा अच्छा है, सारी दुनिया ईश्वरवाद को इनकार कर दे, सब के सब ईश्वर को छोड़ दें, कोई ना उनमें विश्वास करे तो बड़ा मजा रहेगा, हम और वो दो ही रहेंगे, खूब आनंद करेंगे।